کچھ نظروں سے ایسا نظارہ دکھا دو، تم آ کر ہمیں پریم کرنا سکھا دو، بن جاؤ میرے یا پھر اپنا بنا لو، چلو آج ایسا کرشمہ دکھا دو، گوارا نہیں مجھ کو تم سے کنارہ، تم ملنے کا کوئی بہانہ بتا دو، نگاہوں میں تم ہو خیالوں میں تم ہو، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، میرے دل کو جو تم نے کچھ کر دیا ہے، یہ محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، راہ پر زندگی کی چلا جا رہا تھا، میں بت بن کے آگے بڑھا جا رہا تھا، میں کیا تھا مجھے تم نے کیا کر دیا ہے، تھا پتھر مجھے دیوتا کر دیا ہے، تھا سمندر میں لیکن تڑپ پیاس کی تھی، تھا سمندر میں لیکن تڑپ پیاس کی تھی، تیری آنکھوں میں اب ڈوبنا آ گیا ہے، مجھے کندھوں پر اب ٹھکانا ملا ہے، کہ اب مر کے جینا مجھے آ گیا ہے، میں دنیا کی ہر چیز ٹھکرا چکی ہوں، میں دنیا کی ہر چیز ٹھکرا چکی ہوں، میں من میں بابا کو پا ہی چکی ہوں، میں چلنا بھی چاہوں تو چلتے نہیں ہیں، کسی دوسری اور اب میرے پاؤں، میں بابا کو بھولوں یہ دھوکھا نہ کھانا، مجھے چھوڑ دے چاہے سارا زمانہ۔
اوم شانتی۔ صبح کی اویکت وانی میں لکھنؤ کے لیے ایک سندر واکیہ بابا نے کہا ہے، اور وہ واکیہ ابھیاس کے روپ میں یدی ہم کریں تو استھتی بہت اونچی ہو جائے گی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا انوبھو ہو۔ وہ لائن ہے لکھنؤ کی اس بھومی پر مات پتا کے شکشا کی بوندے گری ہے، کیا کہا بابا نے، مات پتا کے شکشا کی بوندے گری ہے، سادھارن بوندے نہیں، बारिश की बूंदे नहीं, शिक्षा की बूंदे। कितनी सुंदर वाक्य रचना है। भगवान स्वयं साहित्य सम्राट है, उसके शब्द, उसके भाव अद्भुत है। चलते फिरते क्या अनुभव करेंगे, मुझ पर क्या पड़ रही है, शिक्षा की बूंदे। निरंतर ज्ञान के चिंतन में रहना, तो योग परिणाम होगा। एक बोर्ड अभी अभी हम पढ़ रहे थे आते आते, उसमें लिखा था बाबा के महावाक्य, तुमने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुमको ढूंढा है। 82 की अव्यक्त वाणी भीतर कैंपस में लगा हुआ है बोर्ड। तो हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान ने हमको ढूंढा, हमको अपना बनाया। तो आज की जो सुबह की अव्यक्त मुरली है, उसके आधार पर हम सब मिलकर कुछ चिंतन करेंगे, जिससे हमारी स्थिति ऊंची हो जाए, ज्ञान जीवन बन जाए। महात्मा बुद्ध के जीवन में दिखाया है, एक राजकुमार संन्यस्त हो जाता है। होड़ चल रही थी उस समय, क्योंकि बुद्ध का आकर्षण इतना अधिक था कि सब तरफ लोग उनके अनुयायी बन रहे थे। तो एक नवदीक्षित भिक्षु, बुद्ध उसे एक दिन कहते हैं कि मेरी एक श्राविका है, तुम जाकर उसके पास भिक्षा मांग कर आओ। वो भिक्षु जाता है और चलते चलते विचार करता है, कई दिन हो गए इस वैरागी जीवन को जीते हुए, मेरा एक बहुत पसंदीदा पकवान था, आज मुझे उसकी याद आ रही है, कहीं से वो यदि मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। और वो उस स्त्री के घर जाता है और संयोगवश उस दिन वही पकवान उस श्राविका ने बनाया है। और वो कहती है, भंते आप भीतर आइए और भोजन ग्रहण कीजिए। वो जैसे ही उस भोजन को देखता है, उसे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, सोचता है ये संयोग ही होगा। और भोजन करते करते उसके मन में विचार आता है, जब मैं राजकुमार था तो भोजन के बाद मैं विश्राम किया करता था, परंतु इस सन्यासी जीवन में विश्राम कहाँ, भोजन के बाद तो वापस धूप में। लौटना है। और जैसे ही वो ये सोचते रहता है, वो श्राविका, वो स्त्री पूछती है, भंते यदि भोजन के बाद आप थोड़े देर विश्राम कर ले तो बहुत अच्छा होगा। उसे थोड़ा आश्चर्य होता है, परंतु फिर भी अपने आप को वो समझाता है कि शायद संयोग ही होगा। जो स्त्री ने ये कह दिया, जो मेरे मन में आया था कि भोजन के बाद मुझे विश्राम करना है, और उसने कह दिया। और जब वो भोजन पूरा करता है और लेटने जाता है, उसके मन में फिर एक विचार आता है कि मैं तो भिक्षु हूं, रोज रोज ऐसा विश्राम, ऐसा भोजन, ऐसी आवभगत, ऐसा आश्रय कहाँ मिलेगा। और उसी समय वो स्त्री दरवाजे से जा रही होती और कहती है, भंते इस जीवन में कहाँ किसको विश्राम और कहाँ कैसा आवभगत और कहाँ कौन सा आश्रय। और तब वो सन्यासी खड़ा उठ होके बैठ जाता है, क्या ये स्त्री मेरे मन को पढ़ रही है। और वो उससे पूछता है, क्या तुम मेरे विचारों को पढ़ रहे हो। वो श्राविका कहती है कि निरंतर अभ्यास करते करते मेरा चित्त इतना शुद्ध हो गया है कि दूसरों के मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं वो मुझे अनुभव होने लगते हैं। तब वो एकदम ही सतर्क हो जाता है और कहता है, अब मुझे जाना है। वो श्राविका कहती है, थोड़े देर बैठ जाइए। वो कहता है, नहीं नहीं, अब मैं नहीं बैठ सकता, मुझे जाना ही होगा। और वो तुरंत वहां से उठता है और जाने लगता है, और मन में घबराया हुआ सा, यदि ये स्त्री मेरे हर मन के भाव को पढ़ती है तो इसे देखकर मेरे मन में थोड़ी सी हलचल भी हुई थी। एक पल ऐसा भी लगा था कि ऐसी ही कोई पत्नी मुझे भी मिल जाए। एक पल ऐसा भी लगा था कि ये अब सामने से ही कह दे कि यहीं रह जाओ हमेशा के लिए। ये भाव भी मन में प्रकट हुए थे, क्योंकि वो श्राविका अत्यंत रूपवती थी और सन्यासी के मन में ये भाव आए। और उसके बावजूद भी वो बार बार कह रही थी, हे भिक्षु, हे भंते। उसे डर लगता है, ये क्या हो गया, ये तो थॉट रीडर है, अर्थात इसने ये भाव भी पढ़ लिए होंगे। इसलिए वो कहता है, अभी मैं यहां नहीं रह सकता। और वो सीधा चलकर वापस आश्रम पहुंचता है। चेतवन विहार में, और बुद्ध से कहता है कि आज के बाद मैं वहां कभी नहीं जाऊंगा, बाकी सब जगह जाऊंगा, वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध पूछते हैं, ऐसा क्या हुआ, और वो सब कुछ बताता है। और तब बुद्ध उससे कहते हैं कि आज से रोज तुमको वहीं जाना है। वो कहता है, नहीं, और सच्चाई से कह देता है कि उस स्त्री को देखकर अचानक मेरे मन में एक अजीब सा आकर्षण और विकार भी उत्पन्न हुआ था, और वो शायद जान गई है मैं वहां नहीं जा सकता। बुद्ध कहता है, तुम्हें रोज ही वहां जाना है अब तो। वो कहते हैं, मैं कैसे मुंह दिखाऊं उसको, मैं नहीं जा सकता। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें जाना होगा, केवल ध्यान इतना रखो कि प्रत्येक क्षण अपने मन को देखते रहो, मन में क्या उठ रहा है, कौन से विचार और कौन से भाव। एक एक पल की सजगता के साथ तुम्हें जाना होगा। वो मना करता है, फिर मान जाता है, मान क्या, उसे जाना ही होता है। और दूसरे दिन वो फिर जाता है, और जाते हुए कौन सा पैर सामने जा रहा है और कौन सा पीछे, इतनी सजगता उसमें है। एक डर भी है कि वो स्त्री मेरा हर विचार पढ़ती है, तो मुझे अपने हर विचार को देखना है, कौन सा विचार आता है और कैसे आता है। वो जाता है उस स्त्री के दरवाजे के पास, वो फिर उसका स्वागत करती है, फिर उसे भोजन देती है। परंतु भोजन करते हुए वो इतना सजग है, इतना सजग, इतना अवेयर कि हाथ ऊपर जा रहा है और हाथ नीचे जा रहा है, श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है, शरीर के किस अंग में कौन सी संवेदनाएं, कौन से सेंसेशंस उत्पन्न हो रहे हैं, वो भी उसे पता है। इतनी अलर्टनेस, इतना माइंडफुल, होकर वो वहाँ बैठता है। वो फिर कहती है थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए, और वो विश्राम भी करता है, परंतु विश्राम करते हुए भी वो जैसे जागृत है, एक अमूर्छा की अवस्था में है। और वापस लौट कर आता है, गया तो भयभीत होकर था, परंतु अब जब लौट रहा है तो मन में नाच रहा है, और मन में इतनी खुशी है और इतनी खुशी है जैसे कोई भीतरी युद्ध उसने जीता है। ऊपर से घटना तो वो भी वही है जो पहले थी, पर इस बार वो विजयी होकर लौटा है, क्योंकि वो सजग था। और बुद्ध को आकर बताता है, और बुद्ध कहते हैं कि जब तुम सजग रहोगे तो विकार तुम्हारे द्वार पर आ ही नहीं सकते। जिस घर में प्रकाश है वहां चोर नहीं जाता। यही अमूर्छा की स्थिति, यही अलर्टनेस। यही माइंडफुलनेस, यही अवेयरनेस राजयोग है। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, अटेंशन प्लीज। क्या कहा बाबा ने? अटेंशन। तो इसका छोटा या छोटे छोटे अभ्यास करते रहना है। अभी बैठे हैं तो केवल बैठ रहे, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, देख रहे हैं तो देख रहे हैं, खा रहे हैं तो खा रहे हैं। राजयोग बाबा का जो कमरा है, और मेडिटेशन जो हॉल है, और मेडिटेशन का जो कमरा है उसके बाहर चालू होता है। प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल सजग, ऐसी अलर्टनेस जीवन में लाना है। और इसी अलर्टनेस में साक्षी भाव छिपा हुआ है। अध्यात्म में साक्षी लक्ष्य भी है तो मार्ग भी है। और साक्षी के छोटे छोटे प्रयोग करते रहना है। चल रहे हैं, स्वयं ही साक्षी होकर देख रहे हैं स्वयं को, अलर्टनेस है। सोचो आप यहां बैठे हो और यहां पर फिल्म की शूटिंग हो रही है। आप जो हो, जो ऑडियंस है वो रियल ऑडियंस नहीं है। एक फिल्म में ऑडियंस चाहिए, वो ऑडियंस है, और जो वक्ता है वो भी एक फिल्म का भाग है, और वहां से शूटिंग चल रही है, चारों तरफ कैमरा है। तो कैसे बैठेंगे, कैसे बैठेंगे? अलर्ट। जो अभिनेता होता है वहां कर्म होता है, कर्ता खो जाता है। वो रोता है पर भीतर से रो रहा है नहीं, वो अभिनय कर रहा है। कर्ता का खो जाना ही संपूर्णता है। तो छोटे छोटे प्रयोग, चल रहे हैं अलर्ट होकर, बैठे हैं अलर्ट होकर, स्वयं को कहना इस समय मैं बैठा हूं, इस समय मैं चल रहा हूं, इस समय मैं खा रहा हूं। तो ये भाव क्या क्रिएट करेगा? एक साक्षी भाव भी और एक सजगता भी, दो चीजें एक साथ होगी। तो दो अभ्यास आप सबको करने हैं। पहला बताया, शिक्षा की बूंदे मुझ पर पड़ रही है। यह है अभ्यास नंबर एक। कब करेंगे ये? सुबह आँख खुली सोचो, शिक्षा की बूंदें मुझ पर पड़ रही है। ये लखनऊ के लिए बाबा के डायरेक्ट महावाक्य है कि मात पिता के शिक्षा की बूंदें यहां पड़ी है। महान आत्माएं जहां भी जाती है अपने प्रकंपन छोड़ के आती है। जहां जहां वो जाते हैं वो स्थान क्या बन जाता है? तीर्थ स्थान। और जिस भूमि पर परमात्मा आते हैं वो इस संसार का सर्वश्रेष्ठ तीर्थ बन जाता है। धन्य भूमि वनपंत पहारा, जहां जहां नाथ पाव तुम धारा। तुलसीदास अयोध्या के लिए लिखते हैं मानस में कि जहां जहां हे नाथ तुमने पाव रखा है वो भूमि धन्य हो गई है। और ये मुरली में आज दूसरा महावाक्य है कि माँ बाप के चरण यहां पड़े हैं इसलिए भूमि भाग्यवान भूमि है। तो सबसे पहला अभ्यास कौन सा करेंगे? मुझ पर क्या पड़ रही है? शिक्षा की बूंदे पड़ रही है। ज्ञान निराकार है, ज्ञान प्रकंपन है, शब्द नहीं। ज्ञान प्राप्त करने की सर्वश्रेष्ठ विधि अगर कुछ है तो वो सुनना नहीं है, वो लिखना नहीं है, वो पढ़ना नहीं है, वो चिंतन करना नहीं है, वो मनन करना भी नहीं है। वो है ज्ञान की तरंगों को धारण करना। ज्ञान तरंगों के रूप में धारण हो जाए चेतना में तो वो भीतर समा जाता है, वो स्वरूप बन जाता है। इसलिए सुबह सुबह प्रातस्मरामि, सुबह सुबह उठकर उस निराकार का चिंतन करना, उस निराकार पर अपना बुद्धि को एकाग्र करना तो उसके ज्ञान की किरणें यहाँ समाती जाएगी। अपने आप सारे रहस्य सृष्टि के आदि मध्य अंत के, हमारे अपने जीवन के आदि मध्य अंत के हमारे सामने प्रकट होंगे। और जीवन में जो बातें चल रही है जिसका हमें कोई उत्तर नहीं मिल रहा है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, वो भी अपने आप स्पष्ट होता जाएगा। तो सबसे पहला अभ्यास बताया, मुझ पर क्या पड़ रही है? शिक्षा की बूंदे पड़ रही है। और दूसरा अभ्यास है सजगता का, अटेंशन, अटेंशन। पहले भी कभी सुनाया था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जेम्स एलन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि मैं युवा था, एक चाय की टपरी पर न्यूयॉर्क में खड़ा था अपने दोस्तों के साथ और देखा दूर से एक बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है। वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर था और हमें खुराफात सूझी और मैंने जोर से चिल्लाया अटेंशन, तो वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके सिर पर सामान था ढेर सारा और वो आ रहा था और वो आर्मी का रिटायर्ड व्यक्ति था। और जैसे हम लोगों ने कहा अटेंशन, वो अटेंशन हो गया और उसका सामान नीचे गिर गया और वो आया गुस्से में तिलमिलाता हुआ और कहा कि अटेंशन किसने कहा? लेखक कहता है मैंने कहा। क्यों कहा? लेखक कहता है कि अटेंशन कहना पाप है। कहते पाप तो नहीं है परंतु मैं 30 साल आर्मी में रहा हूं और जैसे ही तुमने अटेंशन कहा मैं अटेंशन हो गया और सारा सामान नीचे गिर गया। हैबिट, आदत, अभ्यास। वो कहता है कि अगर मैं मर भी जाऊं और शायद कब्र में हूं और कोई अटेंशन कह दे तो हो सकता है, पॉसिबल है कि मैं जिंदा होके खड़ा हो जाऊं और अटेंशन हो जाऊं। अभ्यास इतना पक्का है। तो दूसरा अभ्यास कौन सा करना है? अटेंशन का अभ्यास। हम ये नहीं कह रहे आत्माभिमानी का अभ्यास या परमात्मा को याद का अभ्यास, केवल सजगता का अभ्यास। बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें ना आत्मा है ना परमात्मा है। बुद्धिज्म इज साइलेंट ऑन सोल एंड गॉड। फिर भी अभ्यास वहाँ पर भी वही सिखाया जाता है, कौन सा? अटेंशन का। इसीलिए एक विदेश के लेखक एच जी वेल्स ने बुद्ध के लिखा के लिए लिखा है, सो गॉडलेस एंड येट सो गॉडलाइक, गॉडलेस येट गॉडलाइक। भगवान के विषय में कुछ नहीं कहा, पर जैसे परमात्मा का ही वो स्वरूप थे, सारे गुण उनमें थे, ऐसा लिखा है। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी, ये मुरली कब की है? आज की 2011 की। उसके बाद में फिर से ये एक बार चली है शांतिवन में 2021 में बाबा मिलन में, रिकॉर्डेड अव्यक्त मुरली, और ये आज तीसरी बार चल रही है। तो इस मुरली से हम कुछ अभ्यास, कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें लेंगे, कम से कम 7-7 बातें। हर मुरली से कुछ तो निकालना है जो हमारे साथ रहे, नहीं तो मुरलियाँ आती है मुरलियाँ चली जाती है, उसमें से हमने अगर कुछ निकाला नहीं अभ्यास के लिए तो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहला ही पॉइंट जहाँ से हमने क्लास की शुरुआत की वो है अटेंशन, इसका अभ्यास करना। इसका विरोधी है मल्टीटास्किंग, खाना भी खा रहे, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे, वो भी कर रहे, मोबाइल भी देख रहे, ये भी कर रहे, वो भी कर रहे। जितना हो सके फोकस ऑन वन थिंग। अभी बैठे हैं यहां तो सोचो, केवल मुझे सुनना है, इसलिए नहीं कि सुनाने वाला अत्यंत बुद्धिमान है, इसलिए भी नहीं कि कुछ नई बातें सुनाई जा रही है, इसलिए नहीं। सजगता का अभ्यास, अटेंशन का अभ्यास, माइंडफुलनेस का अभ्यास, क्योंकि मन का स्वभाव है वो या तो अतीत में भागता है या तो भविष्य में, वो यहां नहीं रहना चाहता, बस उसका स्वभाव है, और उसके स्वभाव को समझना है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं माइंड का जो स्वभाव है पानी के जैसा है। पानी का स्वभाव क्या है? जिस पात्र में उसको डालो वैसा वो बन जाता है। गोल पात्र हो, त्रिकोण पात्र हो, घड़ा हो, उसका वो आकार ले लेता है, उसको कहते हैं लिक्विडिटी। माइंड का स्वभाव है इन्फिनिट लिक्विडिटी, अनंत तरलता, तरल है वो। जिस घर में जिस बच्चे का जन्म होता है वो अपने आप वैसा हो जाता है, जो उस घर की मान्यताएं हैं अपने आप को धारण करने लगता है। जिस संस्कृति हम सब का जन्म केवल माँ के गर्भ से नहीं होता है, संस्कृति के गर्भ से भी होता है। अभी भाई साहब कविता में कह रहे थे तहजीब, कितना सुंदर शब्द है, अपने आप वो सारे गुण हम में आने लगते हैं, क्योंकि हम उस संस्कृति को अपने आप धारण करते हैं। और हम सब की जो संस्कृति है वो है ब्राह्मण संस्कृति, ब्राह्मण कल्चर, जो कि सर्वोच्च कल्चर है इस संसार का, क्योंकि हम प्रभु परिवार में जन्म हम सब ने लिया है। तो आज की मुरली से सबसे पहला पॉइंट कौन सा है? अटेंशन, अटेंशन। जितना हम अटेंटिव रहेंगे हमारी आंखों में वो दिखेगा, सब कुछ दिखेगा, वो भाग्य दिखेगा, वो अटेंशन दिखेगा, वो परमात्म प्रेम दिखेगा। तो अभी एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, आपके बाजू में जो बैठा है ना, जो भी बैठा है उसकी आंखों में देखना है क्या देखना है, जो चश्मा पहने चश्मा निकाल के देखेंगे, आंखों में देखो, अच्छे से देखो, घूर घूर के आंखें फाड़ फाड़ के देखो क्या दिखाई दे रहा है, आंखों में ब्रुकुटी में नहीं देखना है, क्या दिख रहा है? खुशी दिख रही है? अभी दूसरों को देखो, और दूसरा जो बाजू वाला है उसकी आंखों में फिर से देखो। देखा दूसरा पॉइंट आज की मुरली से, बिजी। क्या कहा बाबा ने? बिजी हो जाओ, माइंड को बिजी रखना है। क्यों बिजी रखना है? क्योंकि संसार की आत्माएं अत्यंत दुखी है, उदास है, चिल्ला रही है, हे पूर्वज चिल्ला रही है। और यदि हमारा मन बिजी रहता है तो व्यर्थ और फालतू के जो संकल्प है उससे हम मुक्त हो जाते हैं, शुद्ध संकल्पधारी हम बन जाते, अटल शुद्ध संकल्पधारी मुरली में शब्द आया है। तो माइंड को क्या करना है? बिजी रखना है, उसे यहां वहां नहीं जाने देना है। जब भी भटकने लगे उसको काम देना है कि तुम ये करो। जब बिल्कुल ही मन ना लगे, कई ब्राह्मण हमारे पास आते हैं, उपड़ी में आते, कहते मुरली में इंटरेस्ट खत्म हो गया है, अमृत वेला उठने की इच्छा भी नहीं होती है, सेवा में बिल्कुल रस नहीं है, क्या करें, अच्छा नहीं लगता है कुछ। कहीं ना कहीं मन उब गया है, सेम 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 शब्द, सेम शब्द, सेम शब्द। कुछ तो नवीनता चाहिए, उस नवीनता में मन को बिजी कर देना है। समथिंग क्रिएटिव, समथिंग न्यू। और वो न्यू आएगा एकांत में और मौन में और प्रकृति के सानिध्य में। इसलिए तीसरा एक अभ्यास जो सबको करना है वो है रोज थोड़ा देर नेचर में जाना है। चाहे नंगे पाँव चलो जमीन पर, बेयर फुट वॉक, झाड़ के पास जाकर बैठो, बातें करो स्वयं से, देखो प्रकृति को। एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव मैं क्या करूं, कहां से अध्यात्म चालू करूं, अभी अभी आया है आश्रम में। गुरुदेव कहते हैं आश्रम प्रकृति की गोद में है, निसर्ग रम्य वातावरण है। गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, क्या तुम इस समय उस झरने को सुन रहे हो, झरने की आवाज़ को? शिष्य कहता है हाँ मैं झरने की आवाज़ को सुन रहा हूँ। गुरु कहते हैं वहीं से चालू करो, सुनने से। एकांत में जाओ और झरनों को सुनो और पहाड़ी को सुनो, पेड़ों को सुनो, उन पत्तों को सुनो। प्रकृति अत्यंत मौन है और उस मौन में हमें वो प्रकृति उस परम मौन की ओर ले जाती है। हमने अपने जीवन में जो ज्ञान का अध्ययन किया वो पूरा के पूरा अध्ययन प्रकृति की गोद में किया है। आबू की वादियों, आबू के पहाड़, आबू के झरने, हरियाली, पक्षी, पहाड़, चट्टाने, सब इन्हीं के बीच। हमें याद है शुरुआत शुरुआत में जब नए नए आए थे, सुबह छुट्टी के दिन सुबह निकल जाते थे शाम तक, एक ही अव्यक्त मुरली, रविवार का दिन सुबह से लेके वहीं तक रात शाम तक, 4 बजे तक, कभी 5 बजे तक, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, फिर रुकते थे, फल खाते थे, फिर पढ़ते थे। शाम होते होते इतना शरीरीपन आ जाता था कि शाम हर रविवार हमारे लिए ऐसा अनुभव होने लगता है शाम तक कि इस संसार को छोड़ दिया जाए हम, फिर सोमवार से वापस संसार में बैक हॉस्पिटल में। पर रविवार हर रविवार अभी भी वो दिन भर का मौन और एकांत और प्रकृति और ज्ञान चिंतन ऐसा वैराग्य भरता है, ऐसा वैराग्य कि सब कुछ व्यर्थ दिखाई देने लगता है। ये बोलना भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं। तो दूसरा पॉइंट है, बिजी कर देना है अपने आप को, कोई ना कोई नवीन बात में, प्रकृति के सानिध्य में बिजी कर दो, मुरली के चिंतन में बिजी कर लो। और आज की मुरली में आया है सकाश, मनसा सेवा, ये सबसे अच्छा अभ्यास है। और हमें लगता है आगे चलकर यही एकमात्र अभ्यास कार्य में आएगा, इसलिए अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करनी है। पर सकाश सब नहीं दे सकते, सकाश के लिए बड़ी एकाग्रता चाहिए, नहीं तो हम तो अपने ही दुखों में, चिंतन में डूबे रहते हैं। और आज पापा ने कहा इसको बढ़ाओ, लखनऊ कानपुर के लिए बाबा ने कहा है MW, दो को निकालना है, माइक और वारिस। हम केवल M के पीछे ना भागे, W के पीछे, W अर्थात वारिस। एक प्रश्न है आप सभी सबसे, अंत में भगवान की प्रत्यक्षता कैसे होगी? एक शब्द, किस आधार से होगी, किस कारण से होगी, या कौन सा वो माध्यम है जो प्रत्यक्षता करेगा? एक शब्द केवल। हाँ हाँ, स्थिति और हाँ, बहुत काल का अभ्यास। नहीं नहीं, हमें नहीं, भगवान की प्रत्यक्षता इस धरती पर कैसे होगी, प्रश्न ये है। अपनी पॉइंट्स नहीं बतानी है, अपने स्थिति की पॉइंट नहीं, प्यूरिटी ये नहीं, मीडियम किस आधार से, मीडिया से बाप की प्रत्यक्षता नहीं होगी। सत्य इतना सस्ता नहीं है कि मीडिया पर, सत्य इज अनगूगलेबल, मीडिया पे सब कुछ मिल सकता है सत्य छोड़कर। हाँ, मौन, ओके, और हाँ कैसे? प्रश्न है कि ये सृष्टि की जितनी आत्माएं हैं, कितना है, 8.2 बिलियन या 8.3 बिलियन, उन सबको परमात्मा संदेश कैसे मिलेगा? सबको उत्तर पता है, सकाश। हाँ, सकाश के से जुड़कर आगे क्या, वाइब्रेशन, सकाश, वाणी, वाणी से तो नहीं मिलेगा, चेहरे चलन से। किसी मुरली में आया था प्रत्यक्षता होगी साक्षात्कार से, शब्दों से तो होगी ही नहीं, भाषण से तो बिल्कुल नहीं, आत्माओं को घर बैठे ही साक्षात्कार होगा, परंतु उसके ये सारे माध्यम है, सकाश, वाइब्रेशंस, चलन चेहरा, मौन। तो जब भी समय मिले बैठो और इमर्ज करो, आज वर्तमान में हर जगह हलचल है, धर्म सत्ता में हलचल है, राज सत्ता में हलचल है, विज्ञान सत्ता में हलचल है, प्रकृति की सत्ता में हलचल है, हर सत्ता में हलचल है। ऊपर से सब दिखाते हैं हम बहुत स्टेबल है, पर भीतर से हिल रहे हैं। इसलिए ये सबसे बड़ा काम है जो हमें करना है। चलते फिरते उठते बैठते क्या करना है, सबको सकाश देते जाना है, वो किरणें फैलाते जाना है। आशीर्वाद देते जाना है। तो अभी एक चौथा अभ्यास करेंगे। आपके बाजू में जो है ना बैठा, उसके सिर पर हाथ रख देंगे और वो आपके सिर पर हाथ रखेगा, उसको आशीर्वाद दे दो। क्या आशीर्वाद देंगे वो आप डिसाइड करो, सबको करना है। एक दूसरे को आशीर्वाद दे दिया, स्वस्थ निरोगी, माया जीत, मन जीत, इस आत्मा के जीवन में जो बाधा है वो दूर हो जाए, इस आत्मा का बाबा से कनेक्शन जुड़ जाए। ऐसा कुछ कर दो बाबा कि ये आपसे जुड़ जाए। रामायण में दिखाते हैं दशरथ जी, देखते हैं आईने में बाल सफेद हो रहे हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, कहते हैं कुछ करो, पर ये नहीं कहते कि मुझे संतान चाहिए, कहते हैं ऐसे कुछ करो, जय विधि हो ई नाथ हित मोरा, ऐसा कुछ करो कि जिससे मेरा कल्याण हो, बस ऐसा कहते हैं। ये नहीं कि मुझे संतान दे दो, ऐसे सब नहीं कहते, ऐसा कुछ करो जिससे मेरा कल्याण हो। तो दूसरा पॉइंट है मुरली से बिजी, क्या करना है, खुद को बिजी कर देना है, सुबह से लेकर रात तक ज्ञान में बिजी कर दो, योग में बिजी कर दो, किसी एक धारणा पर काम करना है या फिर सेवाओं में बिजी कर दो, और सेवा भी अलग अलग प्रकार की सेवा, अलग अलग सेवा, सेवा अर्थात केवल ज्ञान सुनाना नहीं, स्थूल सेवा भी। कुछ तो क्रिएटिव, केरला में एक व्यक्ति है, वो बस से जा रहा था और उसने देखा एक पक्षी गिर रहा है, उसने पूछा ये पक्षी क्यों गिर रहा है, और गिर के मर गया। लोगों ने कहा पानी, पानी नहीं मिला उसे, तो वो घर गया और उस बूढ़े व्यक्ति के मन में विचार आया कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसने छोटे छोटे बर्तन बनाने चालू किए जिसमें पानी वो भरने लगा और रख दिया पक्षियों के लिए, पक्षी आए पानी पिए, और ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया उसने कि 1,00,000 से भी ज्यादा उसके हो गए। प्राइम मिनिस्टर खुद जब वहां गए थे, मन की बात एपिसोड नंबर 83 में इसका वर्णन किया है कि ये भी कैसी सेवा है। उसको उसके अभी जो बने हुए जो छोटे छोटे हैं वो विदेश में जा रहे हैं, अलग अलग जगह रिकॉर्ड ही बना दिया, वो बूढ़ा व्यक्ति है चुपचाप, बस वो बनाना उसने चालू किया। केवल देखा एक बार कि पक्षी मर गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको बचाने के लिए, क्या ये भी सेवा नहीं है? सेवा केवल आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा नहीं है, स्थूल सेवा भी सेवा है। तो किसी की भी हम मदद कर ले तो अपने आप को क्या करना है, बिजी कर देना है दिन भर। क्योंकि जब मन बिजी नहीं रहता है तो क्या होता है, फिर अटैक होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती से किसी ने पूछा था, आप अकेले हो, ब्रह्मचारी हो, अकेले रहते हो कमरे में, क्या काम विकार आपको परेशान नहीं करता? वो कहता है करता है, रोज आता है, रात को ठक ठक करता है, दस्तक देता है, मैं उससे कहता हूं थोड़ी देर रुको, मैं अभी बिजी हूं, और रुक रुक के चला जाता है। सो कीपिंग वन सेल्फ बिजी, ये है दूसरा। तीसरा पॉइंट आज की मुरली से है कंट्रोल, अर्थात एक साथ शब्द आए हैं मनजीत, जगतजीत, मायाजीत, ये सारे शब्द आए हैं ना, अपने मन को अपने वश में करना। और मन को वश में करने की विधि जबरदस्ती नहीं है, फोर्सफुली नहीं है, उसको समझाना है। अगर कोई धारणा हमसे टूटती है तो उसको डांटना नहीं है, देखना है, उसके पैटर्न को समझना है क्या है। जो संस्कार हमारे साथ इतने समय से चल रहा है, एक दिन में नहीं खत्म होगा वो, रोज बेचैनी। अभी अभी हमारे ओपीडी में एक बहन आए थे, इतना अच्छा उसका योग है, इतनी अच्छी उसकी कुमारी, सब कुछ है, पर नींद ही नहीं आती है। हमने कहा मोबाइल, वो कहती है मोबाइल तो मैं रखती ही नहीं है, लोगों की कंप्लेंट है कि तुम्हारा मोबाइल कभी लगता ही नहीं, वो हमेशा फ्लाइट मोड पर ही रहता है, तो मोबाइल हो गया। भोजन कोई ज़्यादा आकर्षण नहीं है, योग सब कुछ है, मुरलियाँ मुरलियाँ पढ़ना, एग्जाम देना, फिर भी बेचैनी बेचैनी होती है। हर एक को अपनी कमजोरी के विषय में खुद ही ज्ञान है, और उससे कैसे छूटना, इसलिए खुद ही मार्ग निकालना पड़ेगा, क्या किया जाए। अलग अलग मेथड्स ट्राई करना है, क्या किया जाए, मन को कैसे वश में करें। और ये नहीं है कि सारे विकार हम टोटल जीत ले, कुछ कुछ विकार रहेंगे, पर प्रयत्न जारी रखने, धीरे 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 ये कार्य होगा। तो मन को जीतना, मन को वश में करना, मन को समझाना, मन को मार्गदर्शन देना, उसको एक नई दिशा देना, सारे कार्य करने। जैसे एक, इसको जोक ही कहेंगे, एक आर्मी के अफसर अपने सारे जूनियर्स को अपने घर बुलाते हैं कुछ फंक्शन के लिए, पार्टी है और भोजन की व्यवस्था होती है, तो वो आर्मी का जनरल कहता है अपने साथियों से, साथियों देखो ये जो भोजन है ना, इसको इसको अपना शत्रु समझो और इस पर टूट पड़ो, जितना खाना है तुम खा सकते हो, कोई हद नहीं है, अभी जितना चाहिए उतना खाओ, इसको अपना दुश्मन समझो और इस पर क्या करो, भोजन पर टूट पड़ो। तो सारे भोजन खाने लगते हैं, खाने लगते हैं, उसमें से एक सिपाही जो होता है वो कुछ लड्डुओं को यहाँ डालता है जेब में, कुछ इस जेब में डालता है, इस जेब में डालता है, कुछ बैग में। वो जनरल पूछता है तुम ये क्या कर रहे हो, वो कहता है साहब कुछ दुश्मनों को तो मार दिया, किसी को कुछ को बंदी बना कर ले जा रहा हूं। क्या करो, बंदी बनाकर ले जा रहा हूं। तो हो सकता है हम सबको ना मार पाए, पर बंदी बना तो सकते हैं, बंदी बनाकर लेके तो जा सकते हैं। उसकी जो इंटेंसिटी है, वो काम विकार की जो इंटेंसिटी है, और जो अचानक जगता जागता है और हमें गिरा देता है, उस इंटेंसिटी को तो कम किया जा सकता है। वो जो अचानक लालच जागता है, उस लालच को तो कम किया जा सकता है। वो जो क्रोध जागता है, क्रोध क्रोध के रूप में नहीं परंतु इरिटेशन के रूप में, जब हम जो चाहते वो नहीं होता, हमारी अपेक्षाएं भंग करते हैं हमारे साथी, हमारे जूनियर सीनियर्स, तो वो जो आवेग उत्पन्न होता है उसको कम तो किया जा सकता है। उन ट्रिगर पॉइंट्स को ढूंढना है। विकार, हर विकार का कोई ना कोई ट्रिगर है। एक व्यक्ति है जो शराब पीता है दिन रात 40 साल से, और एक दिन छोड़ देता है, और फिर अगले 10 साल नहीं पीता, भूल ही गया शराब के विषय में, और एक दिन जीवन में एक दुख आ गया, उस दुख का शराब से कोई संबंध नहीं है, पर वो दुख आते ही अब उसके अंदर बेचैनी, अब इस बेचैनी से कैसे छूटे। उस बेचैनी से छूटने के लिए वो उधर चला जाता है शराब की तरफ। इसीलिए मूल रूप से आत्माओं में विकार है नहीं और ना ही विकार की चाह है, पर विकार एक मार्ग है उस बेचैनी से छूटने का। इसीलिए व्यक्ति उधर चला जाता है क्योंकि उस समय उसे दूसरा कुछ भी नहीं दिखाई देता है। मेडिकल में इसको कहते हैं डोपामिन डंपिंग, उसमें एक हार्मोन होता है डोपामिन जो हमारे शरीर में रिलीज होता है और व्यक्ति उसका गुलाम बन जाता है कि वो चाहिए, वो काम विकार हो या भोजन हो या कोई एंटरटेनमेंट हो, कुछ भी, ये सब में सेम प्रोसेस होते हैं, वो रील्स और शॉर्ट्स और रील्स और शॉर्ट्स, ये होता है, कुछ तो होता है जिसमें क्षणिक खुशी मिलती है और व्यक्ति उस बेचैनी से छूटने के लिए वहां जाता है। और जाते ही अगर न जाए, एक तरफ बेचैनी, बहुत बेचैनी, और अगर उसमें चला जाए तो फिर पश्चाताप। दो मार्ग है, एक बेचैनी, नहीं जाए तो, और जाए तो पश्चाताप, खालीपन, भारीपन, ये एक्सट्रीम इमरजेंसीज है। इसलिए पहले से ही हमारे पास कुछ इमरजेंसी मेथड्स हो, टेक्निक्स हो, ताकि ये आए ही ना। इसलिए योग के नए नए प्रयोग करते रहना है। आपका अगर 3-4 लोग हो तो बैठ के रोज मुरलियों का डिस्कशन करना है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। 2 लोग बैठो और रोज की जो सुबह की मुरली है उस पर डिस्कशन करो, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, या रोज नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार बैठो, कुमार बैठे, कुमारिया बैठे, टीचर बैठे, आपस में डिस्कशन, जिसका कोई रिकॉर्डिंग ना हो, जिसका कोई वीडियो ना हो, बस डिस्कशन हो, खुल के हर व्यक्ति बोल सके। तो तीसरा क्या बताया, मनजीत, अपने मन को दबाना नहीं है, उसके साथ डांटना नहीं है उसको, कुछ वो करता है तो उसको देखना है, अच्छा जैसे रोज अमृत वेला करते हैं और एक दिन अमृत वेला मिस हो गया तो व्हाट इज द नेक्स्ट रिएक्शन, दुख, हो गए 4:30 बजे उठ गए या 5 बजे उठ गए। एक मार्ग है दुखी होना और फिर पूरा दिन उस दुख के साथ जीना, 1 घंटा तो गया पर 23 घंटे भी चले गए। दूसरा मार्ग है कि ठीक है आज मिस हुआ, क्या कारण है, कुछ तो कारण है, इस कारण से हुआ, उसके ऊपर सोचना, ठीक है आज हम ज़्यादा योग करेंगे, अमृत वेला ज़्यादा कर, पूरा दिन अच्छे से रहेंगे, सेवा ज़्यादा करेंगे, दोपहर में बैठ के योग करेंगे तो होगा, तो ऐसा करना है। अगला पॉइंट है दृढ़ संकल्प। बाबा ने कहा इस शिवरात्रि में क्या करो, दृढ़ संकल्प करो, ये जो कभी कभी है इसको खत्म करो और सदा शब्द लाओ, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प की एक विधि है श्वास से जुड़ी हुई, ऐसा कहा जाता है टेक्निक्स में कि लंबा श्वास लेना और जो संकल्प हम करना चाहते हैं श्वास लेते लेते वो संकल्प करना और श्वास को अंदर रोक देना कुंभक, और उस संकल्प को रिपीट करते जाना, कब तक, जब तक हम उस श्वास को रोक सके तब तक, एकदम ऐसी अवस्था आ जाए कि बस आज श्वास फेंकना है बाहर, तब तक, और एक बार बाहर छोड़ दिया अब उसको बाहर रोक के रख दो और फिर वो संकल्प करो, कब तक, जब तक ऐसी हालत ना आ जाए कि बस अब मरने वाले हैं, उस हलचल की अवस्था में वो सब वो संकल्प सबकॉन्शियस में चला जाता है, क्योंकि मन को क्या चाहिए, शॉक चाहिए। आदत बनने के लिए कितना समय लगता है, हमेशा ये प्रश्न पूछा जाता है, कोई कहते हैं 7 दिन, कोई कहते हैं 14 दिन, कोई कहते हैं 21 दिन, 90 दिन, बट वास्तव में कितना समय लगता है, 1 सेकंड। अगर यहां करंट है इसमें माइक में करंट है और हमने हाथ लगा दिया, करंट लगा, अगली बार हाथ न लगाने की जो आदत है उसको कितना टाइम लगा? एक ही सेकंड, क्योंकि जबरदस्त करंट लगा है। तो सभी कोई एक संकल्प लेंगे अभी अपने मन में, जैसे पवित्रता या क्रोध आता है, बहुत रोग या चिड़चिड़ापन या फिर उदासी या फिर रोना या दुखी होना, कुछ भी, या इरिटेट होना, कुछ भी, तो वो संकल्प अपने मन में लेंगे और लंबा गहरा श्वास लेते हुए अंदर रोक देंगे और उस संकल्प को रिपीट करते रहेंगे। तब तक रिपीट करना है जब तक अंदर रोक सकते हैं कुंभक, और फिर बाहर छोड़ना श्वास को, फिर श्वास को बाहर रोक देना, और फिर वही संकल्प रिपीट करते रहना। कब तक? जब तक रोक सके। स्टार्ट करें, स्टार्ट। कोई भी एक संकल्प ले सकते हैं, कोई भी आपके मन में जो संकल्प आता है, आंखें बंद करेंगे, वो संकल्प के विषय में सोचेंगे कि वो कौन सी बात है जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी है, और उसे छोड़ने का संकल्प। अभी एक गहरा लंबा श्वास भीतर और रोक दो उसको अब अंदर। और वो संकल्प रिपीट करते जाओ। जब मन कहे तब श्वास को छोड़ देंगे और फिर बाहर रोक देना। फिर से उसको रिपीट करते जाना। चाहे तो हाथ का भी, उंगलियों का भी प्रयोग कर सकते हैं दाग के लिए, ठीक है? एक बार फिर से करेंगे। लंबा, आंखें बंद, लंबा गहरा श्वास लो और हाथों से नाक को बंद कर दो। संकल्प रिपीट। श्वास छोड़ेंगे, फिर से नाक बंद, और अब बिना श्वास लिए उस संकल्प को रिपीट करते जाओ। ओम शांति। तो संकल्पों के नए नए प्रयोग करके देखने हैं क्या होता है, और जितना एकांत में और मौन में और प्रकृति के सानिध्य में ये कार्य किया जाएगा, सुबह सुबह उठ के छत पर, जरूरी नहीं है कि एक ही जगह बैठकर योग करें, अलग अलग जगह, कभी खड़े होकर ही करो। जापान में एक जेन मास्टर हुआ था, बोकाजो, तो वो एक विचित्र था, जो सब करते थे वो नहीं करता था, कुछ और ही करता था। फिर उसकी मृत्यु की घड़ी नजदीक आई, उसने कहा ये क्या है, सब लोग लेटे लेटे मरते हैं, मुझे लेटे लेटे नहीं मरना है, सोचता है कैसे मरूं, कैसे मरूं, मरने की आदत है, क्या करूं, फिर सोचता है आज शीर्षासन करते हुए मरता हूं, ये बढ़िया है, आज तक ऐसा कोई नहीं मरा। तो वो शीर्षासन करता है, पैर ऊपर, सिर नीचे, और शरीर छोड़ देता है। फिर लोग कहते हैं अद्भुत है, अब इसको कैसे उतारे? तो उससे भी महायोगी, उसकी बहन होती है, बड़ी बहन, उसको बुलाते हैं कि ये देखो तुम्हारा भाई बोकाजो, ये ऐसे मर गया। वो आके कहती है बोकाजो तुम बाज नहीं आओगे, बचपन से शरारती हो, सीधा हो जाओ। वो सीधा होता है, मर जाता है। वो कहती मर गया ना, चलो गई, अभी ठीक है। डिटैच्ड। तो दृढ़ संकल्प। अगला पॉइंट है एवर रेडी। आज की मुरली में क्या आया? एवर रेडी। भगवान आए और अभी अभी ले जाए, हम तैयार हैं। ना कुछ देखना है, ना किसी को कॉल करना है, ना किसी को फोन करना है, कुछ नहीं करना है। अभी इसी समय भगवान सामने आ गए, एंड आई एम रेडी। ऐसी अपनी आंतरिक तैयारी रखनी है कि मैंने जो जो तैयार किया है वो सब नष्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा सबसे ज्यादा मोह अपनी रचना से होता है, जो हमने तैयार किया है, अपने क्रिएशन से होता है, कवि का मोह अपनी कविता से होता है, गायक का अपने गीत से, लेखक का अपने लेख से, और ज्ञान में यह सूक्ष्म बन जाता है। इसलिए देखना है सब कुछ क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो एक अभ्यास फिर से करेंगे, आंखें बंद, वो सारी चीजों को आंखों के सामने लाओ जिसमें मी माय माइसेल्फ, मैं मेरा मेरे स्वप्न, मेरे द्वारा बनाया हुआ, मेरे द्वारा निर्मित वो स्थान, वो वस्तुएं, सब कुछ भस्म हो रहा है। चिताएं जल रही है, कौन किसके लिए रोएगा, संपूर्ण वायुमंडल में एक वैराग, एक वैराग का प्रकंपन है। चारों तरफ लाशें ही लाशें, आंधी तूफान, प्राकृतिक आपदाएं, ग्रह युद्ध, ओम शांति। तो अभ्यास कौन सा करना है, एवर रेडी का, सब कुछ है पर जैसे कुछ भी नहीं है, डिटैच्ड। निरंतर मन में वैराग का चिंतन हो, इस संसार के प्रति दोष दृष्टि एक सूक्ष्म, नहीं तो ये खींच लेता है। यदि हम भी वही सब करें जो संसार के लोग कर रहे हैं, तो हमारे में और उनमें क्या अंतर। यदि अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो संसार की कामनाएं छोड़नी पड़ेगी, और संसार में आगे बढ़ना है तो फिर अध्यात्म की कामनाएं छोड़नी पड़ेगी। यहां जो प्राप्ति है वहां अप्राप्ति, और वहां जो प्राप्ति है वो यहां अप्राप्ति है। उनके हिसाब से ये सब करना ये टाइम वेस्ट है, हमारे हिसाब से वो टाइम वेस्ट है। पर यदि हमें भी लगा कि हमें भी वो करना चाहिए, हम भी वैसे ही भागते रहे उनके जैसा, तो फिर कोई अंतर ही नहीं रहा। इसलिए ये डिस्टिंक्शन, ये मार्किंग हो, वो अलग हम अलग, हमारा मार्ग ही अलग है, हम वो सब नहीं कर सकते। अगर किया भी और वो प्राप्त भी किया तो बेचैनी रहेगी भीतर एक। तो एवर रेडी। अगला इस मुरली में एक लाइन आई है, फेथ, बाप का बच्चों में क्या है, फेथ है। लास्ट संडे के लास्ट संडे एक मुरली थी जिसमें बाबा ने कहा था, भगवान भी, भगवान को निश्चय है, भगवान ने अपने निश्चय की बात की थी कि मेरा हर एक बच्चा निश्चय बुद्धि है, ये उसको निश्चय। तो फेथ फेथ फेथ, और इस फेथ का पेपर होगा और हर एक को होगा, कभी शरीर की बीमारियों से आएगा, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ, जहां पूरी नींव ही हिल जाएगी भीतर की कि ये क्या हो गया, और वो पेपर होगा। हमें याद है हॉस्पिटल में एक ब्रह्मा कुमारी बहन, उनको कैंसर हो गया था, छोटी बहन थी, 20 से 30 साल के बीच, एक साल उसका कीमोथेरेपी चला था, पर वो अकेली थी, यूपी से ही एक कोई बहन थी, अभी अभी समर्पित हुई थी, पर हमने देखा वो कभी उसको दुखी नहीं देखा, अकेली आती थी। पहले दिन फार्मेसी में जाओ, वो कीमो की दवाइयाँ, फिर कीमो के दिन आओ, फिर दूसरे दिन वापस आओ, ब्लड टेस्ट कराओ। हमने कहा आप किसी को बुलाते क्यों नहीं, उसने कहा अभी कोई है नहीं हैंड्स, पर उसके उसने कभी चर्चा भी नहीं की, कभी कुछ बोला भी नहीं, अकेली, पर एकदम खुश रहती थी हमेशा, और आराम से उस पेपर को उसने पास किया। एक दूसरी बहन है, अभी हॉस्पिटल के आसपास ही रहते हैं, वो जब बहुत यंग थे 20-30 के बीच, गीता पाठशाला जा रहे थे स्कूटर से, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में इतनी भयंकर इंजुरीज हुई, नेक इंजुरीज, कि दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालाइज, इतना भी उंगली भी नहीं हिलती उनकी। हरियाणा की बहन जी थे, कई सालों तक इधर उधर ट्रीटमेंट चला, अभी हॉस्पिटल के आसपास ही उनकी लौकिक बहन और वो आ गए, वहीं रहते हैं। पर हमने इतने सालों से उसको देख रहे, कभी 1% भी डिप्रेशन नहीं उसको, कभी भी पूछो कैसे हो, बहुत अच्छी है, बाबा की याद में है, मुरली पड़ती रहती है, एक व्हीलचेयर है ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक, उससे वो पांडवन भी जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, ना हाथ हिलता है ना पैर हिलता है, उंगली भी नहीं हिलती, इतना बड़ा पेपर, पर खुश है, स्टेबल है। हम देखते हैं ऐसा किसी को हो जाता है तो डिप्रेशन की गोलियां चालू हो जाती है लोगों को, यहां वो नहीं है बिल्कुल भी। तो फेथ, निश्चय। एक नास्तिक होता है, वो जा रहा होता है एक चट्टान के पास से, और अचानक पैर फिसलता है और नीचे गिरता है, और एक छोटी सी हल्की पेड़ की डाली को पकड़ लेता है। अब बस गिरने ही वाला है, नीचे देखता है इतनी बड़ी खाई, और यह डाली कभी भी टूटेगी। कहता है, हे प्रभु, पहली बार नास्तिक है, अगर तुमने, तुम हो और तुमने मुझे बचा दिया तो मैं आज से तुमको मानूंगा कि तुम हो इस संसार में, पर शर्त क्या है, तुमको मुझे बचाना पड़ेगा, और मैं सच्चे मन से कहता हूं मैं तुम्हारे चर्च में जाऊंगा, फूल मालाएं चढ़ाऊंगा, सब कुछ करूंगा, तुम्हारी भक्ति करूंगा, पूजा करूंगा। विदेश की कहानी है। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे बचा, मैं भक्त बन जाऊंगा। अचानक आकाशवाणी होती है कि मैं भगवान बोल रहा हूं। उसे एकदम आशा आती, हाँ हाँ भगवान, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, अगर आपने मुझे बचा दिया तो मैं आपकी पूजा चालू करूं दूंगा तुरंत, कल से, आज से ही। भगवान कहता है, मैं जो कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। वो कहता है, सब कुछ करूंगा, बस मुझे बचा लो। भगवान कहता है, इस डाली को छोड़ दो। वो कहता है, पागल समझ के रखा है क्या? निश्चय, फेथ, विश्वास। हम निकल पड़े हैं बस, अब जो होगा सो होगा, वो साथ है, कुछ नहीं होगा। हमें याद है जब हम सेकेंड MBBS में थे तो बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर था और उसके जो टीचर थे बड़े करप्ट थे जब तक उनकी ट्यूशन ना लगाओ तब तक फेल। सेकेंड ईयर में बायोकेमिस्ट्री में सब, फर्स्ट ईयर सारे फेल। हमें समझ नहीं आ रहा था अब क्या करें, और सारे स्टूडेंट्स उनके घर के चले गए ग्रुप बनाकर कि अभी हम आपकी ट्यूशन लगाएंगे, क्योंकि उसके सिवा पास संभव ही नहीं है। हम नहीं गए, हम ऐसे छत पर थे, सोच रहे थे, अभी बाबा का परिचय तो नहीं मिला था, परंतु भक्ति के संस्कार बहुत गहरे थे और बचपन से ही थे। वो कौन है ये पता नहीं था, परंतु बचपन से ही ध्यान जैसे उस प्रभु से ही जुड़ा हुआ था कि हे प्रभु, तुम कहाँ हो, तुम कौन हो, मैं अब क्या करूँ, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, मैं क्या करूँ। और मुझे वो नहीं करना है जो सब कर रहे हैं, हम नहीं गए ना ही लगाई ट्यूशन, फिर भी पास हो गए थे तो कि एक विश्वास, एक शक्ति है जो कि निरंतर है ऊपर, वही कार्य कर रही है। हम जो करेंगे जैसा करेंगे वो प्रेरणा है, उसकी प्रेरणा से सब कुछ कर रहे हैं। अपने आप टचिंग होती है कि ये करो वो करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, यह करो वो करो। तो जब बाबा से हम जुड़ जाते हैं तो, और समर्पित कर देते हैं तो, वो सब कुछ करता है हमारे लिए। इससे पहले भी कई बार सुनाया है, हमारे पांडवन में छोटा ग्रुप है, उसमें एक माता आती थी, हम लोगों ने पूछा था, ना तुम पढ़ी लिखी हो ना तुमको कुछ आता है, तुम सुबह सुबह दिखती है 2 बजे बाबा की कुटिया में, करती क्या हो। बोलते मुझे ना योग आता है, ना मुझे कुछ आता है, ना मुझे मुरली समझ आती है। तो योग कैसा करती हो? उसने कहा मैं ऐसा करती हूँ, ऐसी आत्मा को यहाँ से निकालती हूँ, ऐसे बाबा के सामने रखती हूँ, बाबा को कहती हूँ इसको, इसके साथ जो करना है वो करो। कितना बड़ा योग है ये, ये संपूर्ण राजयोग है। तो सभी ऐसा करेंगे, आत्मा को निकालो यहां से, जोर से निकालो, सभी निकालो और ऐसे रखो, बाबा के सामने रखो और आंखें बंद करो और बाबा से कहो कि इस आत्मा के साथ तुमको जो करना है वो करो। संपूर्ण समर्पण, इंटीग्रेटेड सरेंडर। ओम शांति। और इस मुरली से लास्ट पॉइंट, ज्ञान मुरली। मुरली के विषय में आया ना, क्या आया है? मुरली मुरली मुरली, 3 बार रिपीट हुआ है। बाबा ने हाथ उठवाया है, कौन कौन रेगुलर सुनता है। तो रूल ये बनाना है कि जितना हो सके जो भाई बहने आए हैं सेंटर पर जाकर ही मुरली सुननी है, ठीक है? कौन कौन डेली सुनता है सेंटर पर जाकर, और जो नहीं सुनते वो हाथ खड़ा करो। सच्चाई के भी मार्क्स है, ठीक है? तो अगर नहीं जा सकते तो कम से कम 1 बार जाना चालू करो, फिर धीरे धीरे 2 बार, रविवार गुरुवार, उसको बढ़ाओ। क्योंकि वहां जाते हैं और हम जब बैठते हैं तो वहां के वाइब्रेशंस काम करते हैं, प्रकंपन, वहां की ऊर्जा, वहां की एनर्जी काम करती है। और हम एकाग्र होकर बैठते, एक जगह होकर बैठते हैं। और सबसे बेस्ट अगर नीचे बैठकर सुनो तो बहुत अच्छा, धरती के वाइब्रेशन, धरती की खुशबू हमें मिलती है साथ साथ। ये 2 चीजें, भोजन और मुरली, जितना हो सके नीचे बैठ के। जो नहीं बैठ सकते उनकी बात अलग। तो मुरली का अध्ययन, मुरली का अभ्यास, मुरली सुनना, मुरली पढ़ना। क्या कहा बाबा ने आज? चारों ही सब्जेक्ट के डायरेक्शंस मुरली में है। क्या करना है ये मुरली से पता चलेगा, पर वो तब जब हमें चिंतन की आदत है, अध्ययन की आदत है, ये क्या है वो क्या है, एक एक शब्द ढूंढना, सोचना, समझना। इसलिए कहा हो सके तो एक छोटा सा ग्रुप बनाओ, 2 लोगों का ग्रुप काफी है, 2 लोग चाहिए डिस्कशन के लिए, बैठे और डिस्कस करो, 1 लाइन पढ़ो, अच्छा ये है, ओके, क्या है क्या है क्या है क्या है, डिस्कस करना। और उसी में से नए नए प्रयोग करना है। तो ये टोटल कितनी बातें हो गई, 7 बातें। तो हम चाहेंगे, हमारे साथ सुखदेव भाई आए हैं, उनके जीवन का अनुभव बहुत सुंदर है, तो शॉर्ट में आपको सुखदेव भाई जी अपने जीवन का अनुभव सुनाएंगे। शॉर्ट में सुखदेव भाई जी, सभी को पॉइंट्स याद हो गई। सबसे पहली पॉइंट, बैठते सजगता से। दूसरा पॉइंट था, अपने आप को क्या कर देना है, बिजी कर देना है, बिजी रहना है, बी फॉर बिजी, कुछ ना कुछ काम में बिजी रहना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हम अगर बिजी नहीं रखे तो मन किधर जाएगा, यूट्यूब पर जाएगा, इंटरनेट पर जाएगा, उसके सारे शॉर्ट्स और रील्स में चलता जाएगा। वो एक माया जाल जैसा है, एक अंधा कुआ, उसमें एक बार चले गए, सागर है वो, उसमें बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए माइंड को टाइम टेबल सेट करना है। तीसरी बात बताई, कंट्रोल, मन को क्या करना है, वश में करना है, उसे समझाना है अच्छे से। चौथा क्या बताया, दृढ़ संकल्प। तो हमने एक विधि देखी, वो आराम से एकांत में बैठ के करना है, श्वास लेना, रोकना, छोड़ना। हमने बहुत सारा कुछ ट्राई किया पर नहीं हो रहा है, तो इसका बार बार अभ्यास करना है तो होगा। हलचल की अवस्था में संकल्प को बोया जाए, मन के भूकंप में। नेक्स्ट क्या बताया, एवर रेडी, क्या देखना है, सब कुछ खत्म हो रहा है, इन आंखों से जो कुछ देखते हो आंखों सहित खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अगला, फेथ, अपने विश्वास पर काम करना है। एकांत में बैठो और बाबा से बातें करो कि बाबा हमने अपना जीवन तुमको दिया है, किसी देहधारी को नहीं, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है अब तुम डिसाइड करो क्या होना है। हमें याद है जब हम मधुबन में थे, पहले आए मधुबन में थे और मधुबन से फिर बाहर गए पढ़ने के लिए, जब जा रहे थे एक नई जगह जा रहे थे, मुंबई जैसी जगह पर, जहां हमें कुछ भी पता नहीं था, कहां रहना है, क्या करना है, कैसे करेंगे सब, नई जगह, और डायरेक्ट हेडक्वार्टर्स में आए थे और फिर जा रहे थे कहीं और। तो हमने एक ही संकल्प लेके गए थे, जैसे मुरली सुनते सुनते ही वो संकल्प आया था कि मैं ही यज्ञ हूं, एक समान जैसे हो गया था वो कि मैं यज्ञ हूं, इस मार्ग में जो जो मेरा सहायक बनेगा उसको, वो मेरा सहयोग नहीं, वो भगवान का सहयोग करेगा, मेरा नहीं, और इस मार्ग में जो जो मेरे मार्ग में आएंगे और बाधा बनेंगे उन सब को मैं अपना गुरु मानूंगा, उन सब से मैं सीखूंगा। हम ये संकल्प लेके निकले, जब पहुंचे वहां एक एक इतने सारे पेपर्स आए। एक हॉस्पिटल में गए थे, वहां के जो मेन डॉक्टर थे उन्होंने एक लाइन कही थी कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तुमको कुछ भी नहीं आता है तुम क्या करोगे, तुम भिखारी हो तो तुम नहीं डिसाइड करोगे कि क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वहां से निकले, दूसरी जगह आए जहां जो रहने का स्थान दिया गया, उस रहने के स्थान में पूरी दारू की बोतलें थी, वहां ऑलरेडी 2 डॉक्टर रह रहे थे, इतना गंदा था वो कमरा, इतना गंदा कमरा था, हमने सोचा हम यहाँ रहना ही नहीं है, वापस जा रहे मधुबन, पर फिर संकल्प आया कि हम यहाँ कुछ सीखने आए हैं, कैसे जाऊं। रात भर बैठे थे बाबा के कमरे में हॉस्पिटल में और सोच रहे थे क्या करूं क्या करूं क्या करूं, चला जाऊं रुकूं, चला जाऊं रुकूं, जाऊं या रुकूं। और फिर डॉक्टर साहब ने एक मैसेज भेजा था कि इफ़ यू वॉन्ट टू बर्न लाइक द सन, इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक द सन, यू मस्ट फर्स्ट बर्न लाइक द सन, यदि सूर्य की तरह प्रकाशित होना है तो पहले सूर्य की तरह जलना होगा। फिर हमने डिसाइड किया वहीं रहेंगे, वो कमरे को 3-4 दिन लगे साफ करने और वहीं रहे, और सब कुछ बड़ा संघर्षमय जीवन था, बहुत भयंकर, और बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई, तो पर वो रहे इसलिए सीख पाए बहुत कुछ, क्योंकि वो देखा जाए तो लौकिक था सब कुछ, पर एक संकल्प था। वहां बहन जी एक बड़े, उन्होंने हमसे कहा था कि तुम्हारे इस लौकिक से अलौकिक प्रत्यक्ष होगा, इसलिए इसको करो, ये सब कुछ सीख लो यहां पर, ये आगे जाके वहां काम आएगा। तो वो लौकिक हमारे लिए था ही नहीं, मेडिकल सब कुछ अलौकिक ही था। तो वो सब सीखे और आए, तो एक निश्चय हमेशा था कि ये सब, हम रोज डायरी लिखते थे, उसमें देखते थे क्या करना है क्या करना है क्या करना है, ऐसे बनाते थे। इस ब्राह्मण परिवार के लिए हम क्या करूं, मैं मुझे क्या करना है, संसार के लिए क्या करना है, पेशेंट्स के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है, रोज रोज लिखते रहते थे, लिखते रहते थे। करना क्या है मुझे पता नहीं, पर एक निश्चय जरूर था कि किसी महान कार्य के लिए भगवान तैयार कर रहा है। वो कौन सा कार्य है मुझे पता नहीं, पर वो कार्य बहुत ही महान है। अभी भी तैयारी चालू है। तो विश्वास, और लास्ट पॉइंट क्या बताया, ज्ञान की मुरली। तो उस पर भी चिंतन करते रहना, मनन करते रहना, पढ़ते रहना, सुनते रहना, लिखते रहना, कुछ ना कुछ उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना।